एक और पाठ, उनके घर में कोई रसोईया नहीं था, यद्यपि एक की खोज बहुत दिनों से हो रही थी। एक दिन एक आदमी आया और पूछने लगा कि रसोईया तो दरकार नहीं है। पूछताछ के बाद उसे नौकर रख लिया गया। शेखर और उसके भाई रसोई घर में नया विधान देखने गए। देखा कि चौका चूल्हा सब धोया गया है और महाराज ने चूल्हे के पास बैठकर अपने हाथ भर दूर चूल्हे से एक लकीर खींच दी है। इस लकीर के भीतर जो भी बर्तन भी जाता था पुनः धुल कर, और महाराज जब उसके बाहर आते थे तब भीतर जाते पुनः पैर धोते हैं और एक पैर से उछल कर भीतर जाते हैं ताकि बाहर की छूत भीतर ना लग जाए। और महाराज थोड़ी थोड़ी देर बाद बालकों से कहते, इधर मत आना, इधर मत आना। बालक देखभाल कर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने एक लकीर खींची और जैसे महाराज को करते देखा था वैसे ही एक पैर पर उछलकर उसे पार करने लगे और हंसने लगे। खैर, जब भोजन का समय हुआ तब एक मुश्किल पेश हुई। अगर परोसन के लिए महाराज आते हैं तब उन्हें मिनट में 10 बार पैर धोने पड़ेंगे, और मिनट भर तो पैर धोते ही लग जाता है। तब रोटी बेलेगा कौन, चुपड़ेगा कौन, खिलाएगा कौन? निश्चय हुआ कि महाराज बाहर ना आए, एक भाई ही परोस कर और खिलाए। पर जो पात्र एक बार बाहर आ जाए वह फिर भीतर तो जा नहीं सकता। जब 5-7 पात्र इस प्रकार भ्रष्ट हो गए तब बालक को शरारत सूझी। उसने अपने हाथ का पात्र लकीर के पार रख दिया। है या क्या किया, सारी रसोई भ्रष्ट कर दी, कहकर महाराज उछल पड़े। बालक हंस पड़ा। शिकायत हुई। फिर फैसला हुआ कि महाराज सबको खिलाकर अपनी रसोई फिर करेंगे। सब खा पी चुके तब फिर चौका हुआ। महाराज नहाए और अपने लिए खाना पकाने लगे। बालक फिर गया, एक बर्तन उठाकर उसने लकीर के बाहर ही रखा और उसे भीतर धकेलते हुए बोला, महाराज थोड़ा नमक मिर्च इसमें रख देना। फिर शिकायत हुई। बालक से पूछा गया तो बोला, मैंने चौके के भीतर बर्तन नहीं रखा, बालक ही रख कर धकेल दिया था। चौका कैसे जूठा हुआ? महाराज ने निश्चय किया, तीसरी बार खाना पकेगा। तब 2 बज चुके थे। माँ ने कहा, 3 बजे चाय तैयार होनी चाहिए और चाय के साथ इत्यादि। महाराज ने एक लंबी सांस ली। शाम को महाराज ने पहले अपने लिए खाना पकाया। सब खा चुके तब पिता से बोले, बाबू साहब हमसे यह नौकरी नहीं निभेगी, और चल गए। सब लोगों ने भी मुक्ति की एक लंबी सांस ली। महाराज चले गए। लोहा या सोना भी एक चोट से नहीं बनता, उस पर कई चोटें लगती है, चोट पर चोट, चोट पर चोट। वैसे ही शिक्षण है, एक या दो चोट में नहीं हो जाता, असंख्य चोटें ही होती है, किंतु उनमें इतना विभेद नहीं होता। वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र होती है। केवल कभी जब धातु का आकार टेढ़ा हो जाता है तब उसे आड़ी तिरछी चोट भी दे जाती है। बस सारा निर्माण, सारा शिक्षण इन्हीं 2-3 प्रकार के चोटों का बना होता है, उनकी असंख्य आवृत्ति में। और उन्हीं 2-3 प्रकार की चोटों को देखकर सारी क्रिया का अनुमान हो सकता है। एक तीसरा पाठ भी है। गोमती में बाढ़ आई हुई थी, बहुत बाढ़। शेखर अपने पिता के साथ घूमने निकला है। घूमने यानी एक छोटी सी नाव में बैठकर, उसे बांसों से निकलवा कर इधर उधर फिरने, क्योंकि सड़कों पर दो दो हाथ पानी आया हुआ है। रास्ते बंद है या अगर खुले हैं तो सिर्फ नावों के लिए। नाव बड़ी बड़ी सड़कों पर हो आई है। वहाँ पर तो ऐसी रौनक लग रही है मानो वेनिस का एक छोटा सा संस्करण भारत आ गया हो, क्योंकि नाव में व्यापारी लोग अपने अनेक प्रकार के खाद्य अनाज, साग तरकारी, फल इत्यादि बेचते फिर रहे हैं। कोई कोई पुस्तक और अखबार की फेरी दे रहा है। बाढ़ के फोटो और हाँ खिलौनों तक बिक रहे हैं। नाव में घरों के दरवाजे पर ऐसी जा लगती है मानो घाट पर लगी हो, और व्यापारी लोग अपने माल का नाम दाम पुकारते हैं। पर वह था बड़ी बड़ी सड़कों पर जिन्हें वे पार कर आए हैं। अब वे जा रहे हैं शहर के निर्धन अंश में देखने के लिए। यह अंश बाकी नगर से नीचा है इसलिए इसमें अधिक पानी भरा हुआ है और नाव मज़े में चलती है। मज़े में, वह मज़ा इधर की गलियां बिल्कुल सुनसान है और दुर्गंधमयी, और अधिकांश घरों में मातम सा छाया हुआ है। यदि उसके मौन से कोई भंग करता है तो किसी के बच्चे की रोने की स्वर ही। वह अपने पिता से पूछता है, वे बेचने वाले इधर क्यों नहीं आते? इधर क्या करने आए? क्या कुछ बिक्री नहीं होती? क्यों, ये गरीब लोग हैं, खरीद नहीं सकते। बालक दया भाव से भर कर उन बेचारे बच्चों की बात सोचता है जिनके माता पिता गरीब लोग हैं और उसके लिए खिलौने नहीं खरीद सकते और ना फल। बालक पूछता है, इनके बच्चे खेलते कहाँ होंगे? नहीं खेलते। क्यों, क्या उत्तर दे कि शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं है कि खेल सके। ये हैं वे जो खेलते नहीं, स्वयं खिलौने हैं जिनसे विधि खेलते हैं। इन्हें स्मृतियाँ कहानियाँ, स्मृति के अर्थ को कुछ खींचना ही है, क्योंकि ये सब मुझे ठीक इसी रूप में याद नहीं है कि बल्कि इनके तथ्य याद ही नहीं है। जब मैं भूत की ओर देखता हूँ तब वे चित्रों का रूप में मेरे सामने नहीं आते। मुझे याद आते हैं केवल वे भाव जो मैंने अनुभव किए हैं, वह विशेष रूप से मना स्थिति जिसे लेकर मैं किसी दृश्य में कभी भागी हुआ था। और ये जो चित्र मैं खींचता हूँ ये उन्हीं मन स्थितियों को लेकर उन पर निर्मित हुए छायापट मात्र है। यदि ये स्मृतियाँ हैं तो मन की स्वतंत्र स्मृतियाँ हैं, वैसी स्मृतियाँ नहीं जिनकी मूल छाप बिठाने के लिए आगे साधन हुई होती है। किंतु शिक्षा क्या है? चित्रों का अनुक्रम नहीं, वह भावों का अनुक्रम है, उन भावों का जो उत्तरोत्तर उन्नति पाते जाते हैं, अधिक विस्तृत और गहन होते जाते हैं, जिनके ऊपर ही चित्रों का आश्रय होता है। वे चित्र एक तरह से भावों की समाधियां मात्र हैं और जीवन ऐसी समाधियां का विस्तीर्ण क्षेत्र, स्थिरता और सामर्थ्य। उसकी शिक्षा में ये दोनों कहाँ से आई या तो दिखता है, किंतु वह पाता है कि उसमें एक और भी गुण है, एक गति, एक प्रेरणा, एक सशक्त आकर्षण। वह कहाँ से आया वह समझता है, वह कुछ है, विकास गति का एक बुलबुला है, क्षण भंगुर है, पर फिर भी कुछ स्वतंत्र, कुछ गतिमान, कुछ प्रेरक, कुछ उत्कर्षपूर्ण, कुछ अमर है। क्या यह एक विचित्र बात है कि जो घटनाएं या विचार जीवन का पथ निर्देश करती है उसे किसी की दिशा और प्रेरित करके उसके भविष्य तक मार्ग का अमिट निर्णय कर देते हैं। वे घटनाएं या विचार स्वतंत्र, अत्यंत उलझे हुए और अस्पष्ट होते हैं। उनकी मूल प्रेरणा का, उनका निर्देशन करने वाली शक्ति का कोई पता नहीं लगता। इसी तरह जब मैं विचार करता हूँ कि मैंने यह निरंतर ऊर्ध्वमुखी प्रेरणा कहाँ से पाई, कि वह क्या है जो सदा मेरी जीवन की गति को निर्दिष्ट करता रहा, उसका उत्कर्ष करता रहा, किसी ऐसे शिखर की ओर जा पाया नहीं जा सकता जो कल्पना में भी दिखता नहीं, उच्चतम बादलों के ऊपर कहीं छिपा रहता है, तब उत्तर स्पष्ट नहीं मिलता। दिखते हैं अनेक अशब्द चित्र। पिछली कुछ एक घटनाओं ने शिखर को कुछ विचलित कर दिया था। उसके जो कुछ एक स्थिर विश्वास थे, उसकी जो निष्ठाएं थी, वे टूट सी गई थी। उसे सब और सब कुछ मिथ्या सा लगने लगा था। वह अपने को किसी वस्तु में इस डर से आसक्त नहीं कर पाता था, या भी झूठ ना निकले, हाथ से फिसल ना जाए, और इसी कारण से कुछ अलग अलग रहने लगा था, अलग ही घूमने जाता था। इस समय के जितने भी चित्र याद आते हैं उनकी मुख्य उल्लेखनीय बात है उनकी शांति। संभवतः इन दिनों वह शांति की इतनी उग्र खोज में था, जहाँ वह प्राप्त हुई चाहे क्षण भर के लिए, वहीं स्थल उसकी स्मृति में बैठ गया। इसलिए उस समय की स्मृतियाँ बड़ी सुखद है। गोमती का तट, संध्या, शेखर अकेला धीरे धीरे टहल रहा है पेड़ों की ओर देखता हुआ। कुछ पेड़ों पर पीली सी आकाश बेल के जाल के जाल, ढेर के ढेर पेड़ पड़े हुए हैं। उन्हीं को देखता हुआ और यह सोचता हुआ कि इन्हीं को क्यों यह अधिकार प्राप्त हुआ कि इनकी उत्पत्ति भूमि से ना हो, पर पैर भूमि पर ना टिके, ये सदा ऊंची रहकर ही दूसरों के सहारे पृथ्वी से अपना जीवन रस घींचा करे। पर वह बहुत देर तक यह नहीं सोच सकता। उसका मन हटकर गोमती की लहरों पर कांपते हुए त्रामवन प्रकाश की ओर जाता है और वहीं रह जाता है। उसे लगता है कि उस प्रकाश में कुछ है जो उसे बुलाता है, खींचता है, सुख देता है, पर वह उसे नाम नहीं दे पाता। सौंदर्य शब्द उसके मन क्षेत्र में कभी तक नहीं आया है। लखनऊ के बारादरी में शेखर अकेला बैठा है। एक अत्यंत सुंदर घोड़ा तीव्र गति से दौड़ता हुआ उसके सामने से जाता है। उसकी गति में कहीं चेष्टा नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है, मानो कहीं भी इच्छा की प्रेरणा ही नहीं है। वह स्वतः संपूर्ण सुंदर अच्छे संगीत की तरह ताल विशिष्ट एक गति है। शेखर एकाएक खड़ा हो जाता है। यह एक नई बात थी उसके जीवन में और यह विद्युत की तरह उसके मन में तड़प गई, लय की तरह। वह फिर बैठ गया, आकाश की तरह, शांत पहाड़ी झील की तरह स्वच्छंद। शायद तभी से यह जीवन स्वतंत्र और वस्तु को खोजने लगा, और शायद उसने उसे पाया भी, क्योंकि बहुत वर्षों बाद अपने जीवन के घोरतम अंधकारमय दिनों में भी जब वह अपने सब ओर के विरोधियों से त्रस्त हो उठता, तब एकाएक कोई आलोचक किरण उस अंधकार को चीर जाती और वे सब वेप्रत्य उलझने इस हद तक हल हो जाती कि एक ही महान एकत्व के विभिन्न अंग जान पड़ने लगती है। एक दिन शेखर के पिता उसे अजायब घर में ले गए और जिस कमरे में मूर्तियां रखी थी वहां पहुंचकर अपने काम पर चल गए। शेखर कुछ सहमा हुआ इधर उधर देखने लगा। उसके सभी ओर मूर्तियां थीं, कुछ साबुत, कुछ टूटी, कुछ शरीरहीन शरीर, कुछ सिरहीन शरीर, कुछ काली, कुछ श्वेत, कुछ पत्थर की, कुछ मिट्टी की, कुछ चमचमाती हुई धातु की, कुछ जंग सी खाई हुई। शेखर की दृष्टि एक प्रतिमा पर जाकर ठिठक गई, यूं कहें कि प्रतिमा के पैरों पर ठिठक गई, क्योंकि वह प्रतिमा बहुत बड़ी थी और शेखर की आंखों के तल पर उनके पैर ही आरंभ होते थे। शेखर धीरे धीरे दृष्टि उठाता गया। वह छत से पहुंच गई जहां मूर्ति का सिर था। शेखर ने फिर उसी ऊपर से नीचे तक देखा, पैरों के नीचे लगी हुई लकड़ी की तख्ती तक, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था महावीर जिन। शेखर के मन में किसी भाव ना जाकर कहा, मूर्ति बिल्कुल नंगी है। वह नंगी थी। शेखर नहीं समझ सका कि कैसे उसकी विशाल भीम का प्रकांड नग्नता के चित्रण करते उसके गढ़ते समय मूर्तिकार का हाथ नहीं कांपा, उसकी कल्पना नहीं लज्जित हुई। नग्नता का सत्य सत्य की तरह नंगा उसके जगत में नहीं था, आने नहीं दिया गया था। उसके लिए नग्नता झूठी थी, भद्दी थी, अवांछनीय थी और अदर्शनीय थी। किंतु या इसलिए वह स्थिर और अकंप दृष्टि से उसे देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा, मानो उसके मन में उस नग्नता को स्वीकार कर लिया। वह इसकी दृष्टि में अताजीय, अनस्वाभाविक, सुंदर हो उठी। वह धीरे धीरे लौट पड़ा, शांति की मधुर शीतल सांसों में मानो उसके मन पर एक हल्का सा परिमल बिखेर गई। कुछ दिन बाद जब उसके पिता सारनाथ गए और बौद्ध विहार में ठहरे, तब वह अवसर पाकर चोरी से निकला और एक बड़े पोखर के किनारे से होता हुआ सारनाथ के अजायब घर की ओर बढ़ता चला। पोखर में कुछ लोग सिंघाड़े बटोर रहे थे। किनारे पर या कीच में कुछ अधनंगे लड़के शोर मचा रहे थे और उसने आंखें उठाकर देखा भी नहीं। किसी समय जो दृश्य आहर्दमयी आत्मविस्मृति में डुबा देता है, वह आज उसके लिए देखने की वस्तु ही है नहीं, क्योंकि वह अजायब घर की ओर जा रहा था। सारनाथ के अजायब घर को बहुत कम लोग देखने आते थे और जिस समय शेखर वहां पहुंचा, उस समय उसके बंद होने का भी समय भी था। शेखर ने देखा दरवाजे पर या चरखड़ी के पास कोई चपरासी नहीं था। वह चुपचाप चरखड़ी के नीचे से होकर भीतर हो लिया।